इति कह करके प्रतिपादित करते हैं। मुनियों का मन भी यहां नहीं जा पाता, मुनि मन अगम। और ऐसे भगवान कोल भील इनकी बातों को सुन रहे हैं। किरातिन बैन कैसे सुनते हैं, जिम पितु बालक बैन, जैसे माता पिता अपने बच्चों की बात सुनते हैं। हर जगह जहां कहीं राम जी के माधुरी की लीला का वर्णन किया, चाहे ऐश्वर्य तो ऐश्वर्य है, ये माधुरी की लीला में भी गोस्वामी जी ने बार बार ये ध्यान कराया, भैया ये लीला को सामान्य मनुष्य की लीला मत समझ लेना, ये साक्षात भगवान की लीला है। इसलिए महाराज वाल्मीकि के रूप में वात्सल्य भाव, और जब वाल्मीकि तुलसी भयो, वाल्मीकि जी तुलसीदास जी के रूप में प्रकट हुए तो दास्य भाव। कौन भाव है? दास्य भाव। और दास्य भाव, दास तो सदा अपने स्वामी के ऐश्वर्य को महिमा को स्वीकार करता है, इस प्रकार के भाव को उन्होंने स्वीकार किया। यही गोस्वामी जी के अवतार में हेतु है। कलिकुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी, कलिकुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी वयो, कलि के कुटिल जीवों के उद्धार के लिए महर्षि वाल्मीकि ही तुलसीदास जी के रूप में प्रकट हुए। त्रेता काव्य निबंध करी सतकोटि रामायण, एक अक्षर उद्धरे ब्रह्म हत्यादि परायण। एक एक अक्षर ब्रह्म हत्यादि जैसे भयंकर पापों को नष्ट करने वाला है। अब भक्तों को सुख देने के लिए फिर वे ही महर्षि वाल्मीकि तुलसीदास जी के रूप में प्रकट होकर के उन्होंने भगवान की लीला का विस्तार किया। बहुर लीला विस्तारी के दो भाव हैं। एक महाराज जी हमारे कहते थे कि तुलसीदास जी ने भी अपनी लीला का विस्तार किया। तो भगवान की लीला होती तो क्या भक्त की लीला नहीं होती? भक्त की भी तो लीला होती। अवतार लेकर एक नई लीला का विस्तार किया, और श्री राम जी की भी लीला का विस्तार किया। और गोस्वामी जी की भक्ति को एक पंक्ति में नाभा जी ने कहा है, एक पंक्ति में गोस्वामी जी के संपूर्ण स्वरूप का निरूपण कर दिया है। यह है नाभा जी की सामर्थ्य। आप लोग कहेंगे वो एक पंक्ति कौन सी है जिसमें गोस्वामी जी का संपूर्ण स्वरूप प्रकट हो गया? नाभा जी कहते हैं,
साधो जी अब भक्तन सुख देन, साधो जी अब भक्तन सुख देन, बहुरी लीला विस्तारी,
बहुरी लीला विस्तारी।
अब आगे की पंक्ति है जिसमें संपूर्ण गोस्वामी जी का स्वरूप है।
साधो जी राम चरण रस मत,
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 रहति अहनिश व्रत धारी,
रहति अहनिश व्रत धारी।
केवल एक पंक्ति में राम चरण रस मत रहत अहिनिश व्रतधारी, केवल दिन में नहीं, केवल रात में नहीं, अहर्निश श्री राम जी के चरणों का जो दिव्य रस है, अनुराग रूपी रस है, उस रस में मत वाले बने रहते थे गोस्वामी।
श्री राम चरण रस मत रहत अहिनिश व्रतधारी।
इस संसार अपार के पार को सुगम रूप नौका ले, बंदो तुलसी के चरण जिन कीनो जग काज, कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। एक जहाज नहीं, ये रामचरितमानस के सात कांड सात जहाज हैं। किसी जहाज में चढ़ जाओ भव सागर से पार कर जाओ। और वारिक अर्थ में लें भैया जी तो एक एक चौपाई जहाज है, एक एक चौपाई जहाज है, एक चौपाई का आश्रय लेकर भवसागर से पार होता है। बंदो तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगटे अमित जहाज। सप्त जहाज तो है ये अमित जहाज, प्रत्येक चौपाई जहाज है, किसी चौपाई का आश्रय लेकर भव सागर से पार उतर जाओ। बहुत सुंदर हमारे भारतवर्ष के कवि हुए हैं, राष्ट्र कवि श्री मैथिली शरण गुप्त, उन्होंने जी साकेत काव्य के रचयिता, तो महान भक्त कवि श्री मैथिली शरण गुप्त ने गोस्वामी जी के प्रति अपनी भाव सुमनांजलि अर्पित की है, भाव पुष्प निवेदित किए हैं, बहुत सुंदर।
देख कर सहसा हमारी साधना म्रियमाण, देख कर सहसा हमारी साधना म्रियमाण,
हमारी साधना म्रियमाण है, अस्तित्व शून्य हो रही है, मृतप्राय हो रही है, हमारी उपासना साधना में अब बल नहीं रहा।
देख कर सहसा हमारी साधना म्रियमाण, जिस कमंडलु के अमृत ने थे बचाए प्राण।
उन बाबा श्री तुलसीदास जी के कमंडल में जो रामचरित्र का अमृत भरा था, उसकी एक एक बूंद ने हमारी मरी हुई साधना पद्धति को पुनः जीवित कर दिया और हमारे में नए प्राणों का संचार कर दिया।
वह तुम्हारे हाथ में था,
वो कमंडल किसके हाथ में था?
बोले वह तुम्हारे हाथ में था साधु तुलसीदास।
हे साधु सिरमौर तुलसीदास जी, वो कमंडल जिसने मरे हुए साधकों को पुनः जीवित कर दिया, प्राणदान कर दिया, प्रेम दान कर दिया, वो कमंडल आपके हाथ में।
वह तुम्हारे हाथ में था साधु तुलसीदास, जी उठी फिर भावना दृढ़ हो गया विश्वास, जी उठी फिर भावना दृढ़ हो गया विश्वास, जब तमोमय शून्य में, जब तमोमय शून्य में भय दृश्य थे सब ओर।
भयंकर मुगल काल था, भारतीय संस्कृति पर कुठाराघात हो रहा था, और उस भयंकर समय में
जब तमोमय शून्य में भय दृश्य थे चहुं ओर, तब निराशा की घटाएं कर रही थी घोर।
निराशा की घटाएं, घोर घटाएं अंधकार फैला रही थी उस समय।
हे गोस्वामी जी, आप उन घनघोर घटाओं के मध्य सूर्य बनकर प्रकाशित हो गए।
तब तुम्हीने था किया, तब तुम्हीने था किया मानस सरोज विकास, तब तुम्हीने था किया मानस सरोज विकास, कवि कहें या रवि तुम्हें हे धन्य तुलसीदास, कवि कहें या रवि तुम्हें हे धन्य तुलसीदास।
हे तुलसीदास जी, आपको हम कवि कहें या इन निराशा की घटाओं के अंधकार को दूर करने वाला, मानस रूपी कमल को खिलाने वाला सूर्य कहें, आप ही बताओ,
हम आपको क्या कहेंगे।
उस समय गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज का अवतार हुआ। कल हमने एक महापुरुष का नाम लिया था, काशी के महान विद्वान मानस जी के उपासक पंडित श्री विजयानंद त्रिपाठी जी, जिनकी विजयानंदी टीका रामचरितमानस की विद्वत भोग्य टीका है। वे पंडित श्री विजयानंद त्रिपाठी जी जो मानस राजहंस के रूप से अपने समय में विख्यात थे, उन्होंने भी गोस्वामी तुलसीदास जी को के संबंध में बहुत अच्छे भाव प्रकट किए हैं। श्री विजयानंद जी कह रहे हैं, वेदन उधार्यो। हम आपसे पूछते हैं, वेदों के उद्धार का कार्य किसने किया?
प्रलय पयोधि जले धृतवान सी वेदम, प्रलय पयोधि जले धृतवान सी वेदम, विहित वहित्र चरित्र मतेदम, विहित चरित्र केशव धृत मीन शरीर, जय जगदीश केशव धृत मीन शरीर, जय जगदीश।
वेदानुद्धरते जगन्निवहते, वेदों के उद्धार का कार्य भगवान मत्स्य ने किया। पंडित विजयानंद त्रिपाठी जी कह रहे हैं, सतयुग में वेदों के उद्धार का कार्य मत्स्य भगवान ने किया, कलयुग में वेदों के उद्धार का कार्य गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया। यदि रामचरितमानस को प्रकट न किया होता तो वेद के गंभीर सिद्धांत को लोग समझते कैसे। और आप आश्चर्य मानेंगे, इस भाव का कर्पात्री जी महाराज ने खुले हृदय से समर्थन किया। पूज्य बक्सर वाले मामा जी की वाणी से हमने सुना है कि कर्पात्री जी महाराज ने स्वयं अपनी वाणी से काशी में यह घोषणा की थी कि वेदार्थ पारिजात नामक ग्रंथ लिखने के बाद बड़ी निराशा हुई, इसको लोग समझेंगे कैसे, वेदों का तात्पर्य कैसे समझेंगे, अब सनातन धर्म का क्या होगा, संस्कृत भाषा का लोप हो रहा है, बहुत व्याकुलता हुई। और व्याकुलता ज्यादा वही तो सिर में पीड़ा होने लगी कर्पात्री जी महाराज के। तब उन्होंने सोचा कि चलो थोड़े अपने मस्तिष्क को शांत करने के लिए रामचरितमानस पढ़ लें। रामचरितमानस का महाराज पाठ करने लगे तो उसी समय उनके चित्त में इतनी प्रसन्नता आई, बोले जो चिंता आज हम कर रहे हैं सैकड़ों वर्ष पहले गोस्वामी तुलसीदास जी ने की होगी। आज जब तक रामचरितमानस इस धरती पर विराजमान है तब तक सनातन धर्म का कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है, तब तक सनातन धर्म के ऊपर कोई आंच आने वाली नहीं। महाराज, यह एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसके प्रति किसी को विरोध नहीं, यह किसी एक संप्रदाय का ग्रंथ नहीं है, मनुष्य मात्र का ग्रंथ, सभी इसका आदर करते हैं, ऐसा अद्भुत ग्रंथ। तो बोले वेदों के सिद्धांत को भाषा ग्रंथ के रूप में प्रकट करके वस्तुतः तुलसीदास जी ने वेदों का उद्धार किया। वेदन उधार्यो हिंदू जगत संहार्यो, वेदन उधार्यो हिंदू जगत संहार्यो, धर्म डूबत उबार्यो, हार्यो उदर कली को। वे कहते जैसे कच्छप, जैसे मत्स्य भगवान ने वेदों का उद्धार किया, मत्स्य भगवान की तरह तुलसीदास जी ने वैदिक सिद्धांत को रामचरितमानस के रूप में प्रकट करके वस्तुतः वेदों का उद्धार किया। ये धर्म रूपी मंदराचल रसातल की ओर जा रहा था, उसको कच्छप बनकर उबार लिया। धर्म डूबत उबार्यो, धर्म डूब रहा था उसको उबार लिया और बोले त्रेता के प्रारंभ में नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप के पेट को फाड़ा था और इस कलयुग में वही कार्य नरसिंह भगवान वाला कार्य तुलसीदास जी ने किया। त्रिपाठी जी कह रहे हैं क्या कार्य किया, बोले कली रूपी हिरण्यकश्यप के पेट को फाड़ डाला। वेदन उधार्यो हिंदू जगत संहार्यो, धर्म डूबत उबार्यो थार्यो उदर कली को है। भाषा कविताई की बड़ाई त्यू लोक छाई, भाषा कविताई की बड़ाई त्यू लोक छाई, गई कुटलाई बाम पंथ परियो फीको, बाम मार्ग भी फीका पड़ गया, बाम पंथ परियो फीको, दूरी भय दूरित सारे पाप दूर हो गए गोस्वामी जी की पवित्र वाणी से, दूर भय दुरित दया की पेज पूरी भई, दूर भय दुरित दया की पेज पूरी भई। अब की बार एक पुस्तक में सेठ जी का एक भाव पढ़ने को मिला, बहुत सुंदर। सेठ जी लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं इस युग के महान सच्चे साधु महात्मा तुलसीदास जी ने साधुता की वास्तविक परिभाषा प्रस्तुत कर दी। सेठ जी बोल रहे हैं क्या,
बोले परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई।
सब कह दिया पर पीड़ा सम नहीं अधमाई,
तो दूर भय दुरित दया की पेज पूरी भई, प्रगट जवाल भयो जवनन के जी को।
जो म्लेच्छ हैं उनको जलाने वाली ज्वाला तुलसीदास जी के रूप में प्रकट हो गई। म्लेच्छ माने जो सनातन धर्म के विरोधी प्राणी हैं, उनको तो उनके कलेजे को जलाने वाली हो गई। आप अन्यथा न समझें, एक विचारक ऐसा है जिस विचारक के विचारों की इस समय बहुत से पढ़े लिखे लोग सराहना कर रहे हैं। बहुत बड़ा बुद्धिमान था, बहुत बड़ा वक्ता था, अच्छा विचारक था, अच्छी बात है, पर उस उतने बड़े विचारक ने तुलसीदास जी की बड़ाई नहीं की। बड़ाई तो नहीं की अपितु कई जगह कटाक्ष किया, आलोचना की। और हमारे पूज्य महाराज कहते थे कि जिसने तुलसीदास जी को नहीं समझा, जिसने तुलसीदास जी की वाणी को नहीं समझा, उसने धर्म सिद्धांत के संबंध में कुछ भी नहीं समझा, न भारत के संबंध में समझा, न भारतीय संस्कृति के संबंध में समझा, न परमात्मा जीवात्मा किसी के संबंध में कुछ नहीं समझा। ऐसे परिपूर्ण महात्मा हैं तुलसीदास जी। सनातन धर्म के सर्वांगीण स्वरूप को प्रस्तुत किया है, सनातन धर्म के सर्वांगीण स्वरूप को गोस्वामी जी ने। इसलिए भला जो सनातन धर्म के सच्चे अनुयायी नहीं है, जिन्हें वर्ण धर्म आश्रम धर्म में श्रद्धा नहीं है, वे कैसे तुलसीदास जी के प्रशंसक हो जाएंगे। उन्हें तो तुलसीदास जी की वाणी अपने विचारों के प्रचार प्रसार में बाधक प्रतीत होगी, तो उनकी तो मजबूरी है कि उनको खंडन करना ही पड़ेगा। इसलिए वो चाहे जितना बड़ा विचारक हो, यदि उसकी तुलसीदास जी के सिद्धांतों में श्रद्धा नहीं है, तो हमें भी उसके विचारों में श्रद्धा रखने की कोई आवश्यकता नहीं। जितना बड़ा विचारक हाँ हाँ आखिरी बात कह रहे हैं विजयानंद जी,
दसों अवतारन मह, दसों अवतारन मह कीन्हो करतार जोन, तौन करवे को अवतार तुलसीदास को।
कैसी श्रद्धा है, हम तो त्रिपाठी जी को प्रणाम करते हैं। वे कह रहे हैं दस अवतारों ने जो कुछ किया उसको अकेले करने के लिए कलिकाल में तुलसीदास जी का अवतार हुआ।
दसों अवतार नमः कीन्हो करतार जोन, तौन करवे को अवतार तुलसीदास को।
और बेनी कवि भी पीछे नहीं है। बेनी कवि ने भी खूब लिखा है, महाकवि बेनी लिखते हैं।
वेद मत सोधी सोधी
के पुराण समे, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि भाषा निबंधम। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल माकनो।
वेद मत सोधी 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 के पुराण सवे, संत ओ असंतन को भेद को बताओ। तो
तुलसीदास जी प्रकट न होते तो वेद पुराणों का सार सर्वस्व, संत और असंत का स्वरूप इसको प्रकट करके कौन बताता।
कपटी कुराही कूर कलि के कुचाली जीव, कपटी कुराही कुमार्ग पर चलने वाले, कपटी कुराही कूर कलि के कुचाली जीव, कौन राम नाम हो की चर्चा चलाओ।
बोले तुलसीदास जी प्रकट न होते तो राम नाम की चर्चा ही कौन चलाता। भैया इतना बड़ा श्री राम नाम का भक्त न भूतो न भविष्यति,
मेरे तो माय बाप दो आखर हो शिशु अरनि अरो।
बोले हमारे माता पिता का नाम क्या है, गोस्वामी जी कहते रकार मकार ये मेरे पिता माता, मैं शिशु हूं इनके सारे निर्भर हैं।
शंकर साखी जो राखी कहो कछु तो जरी जीह गरो, अपनो भलो राम नाम ते तुलसी समझी परो, भरोसो जाही दूसरो सो करो।
बोले तुलसीदास जी न होते तो जीव राम नाम जपते हुए नहीं दिखाई पड़ते।
बेनी कभी कहें मानो मानो हो प्रतीत यह, पाहन ही ये में कौन प्रेम उपजावत।
बोले तुलसीदास जी न होते तो पत्थर हृदय में प्रेम कौन जगाता। अच्छा एक बात बतावें, हम आप सब लोग यहां बैठे हैं, ऐसा कोई कठोर हृदय का व्यक्ति हो सकता है क्या जो रामचरितमानस का पाठ करे और उसमें भरत चरित्र पढ़े और उसका हृदय एक बार भर ना आवे, कंठ भर ना आवे, आंख गीली न हो जाए, ऐसा कोई मनुष्य आपने देखा है? कोई माई का लाल नहीं।
स्वामी जी कह रहे हैं कोई माई का लाल नहीं।
महाराज जिन पूज्य बाबा का हम लोग उत्सव मना रहे हैं वे हमारे पूज्य बाबा श्री राधा बाबा मिश्री जी के द्वारा है, जिनके प्रति उनका बड़ा लाड़, अपने मिश्र जी के द्वारा वे नित्य प्रति श्री रामचरित मानस का श्रवण करते, विराजमान काल में श्रवण करते और आज भी बाबा मिश्र जी की वाणी से मानस जी का नित्य श्रवण कर रहे हैं, आज भी श्रवण कर रहे हैं। हमें लगता है ये बाबा की भावना रामचरितमानस के प्रति और गोस्वामी तुलसीदास जी के प्रति, उसी भावना ने सभी प्रेमियों के हृदय में
बंका जी के हृदय में यह प्रेरणा करी होगी कि इस बार बाबा के जन्म शताब्दी वर्ष पर रामचरितमानस और गोस्वामी तुलसीदास जी की ही चर्चा होनी चाहिए। इसलिए महाराज रास बिहारी रामलीला कर रहे हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान, हमारे वृंदावन के ठाकुर इतनी बढ़िया रामलीला कर रहे हैं भगवान, हमने तो इस लीला कभी देखी है, बहुत ही सुंदर लीला, अद्भुत लीला है। आज बाबा के उत्सव में बड़ी अद्भुत लीला हो रही है। बोले कौन ऐसा पाषाण हृदय है जो रामायण का पाठ करके पिघल न जावे। बोले पत्थर हृदय में प्रेम को तुलसीदास जी के अतिरिक्त कौन जागृत करता। हमारे महाराज जी के पास एक महात्मा रहते थे, श्री हरे राम बाबा, बड़े अनुरागी प्रेमी संत थे। हम उनकी बहुत सी चर्चाएं यदा कदा प्रसंगों में करते हैं। भगवत प्राप्त संत थे, वे एक गांव में रह रहे थे ओरछा क्षेत्र में। तो एक भगत उनको मिल गया, उसका कोल्ड स्टोर था, शीतगृह होते हैं जिसमें आलू वगैरह रख दिया जाता है, समय से उसको फिर बेचते हैं, गोदाम कर लेते हैं, ठंडा घर। वो बाबा का भगत हो गया, बाबा हनुमान जी के मंदिर पे रहते थे। बोले बाबा इस समय हम बड़े संकट में हैं, किसी ने हमको बताया है कि वो बाबा बहुत अच्छे हैं, वो यदि हनुमान जी को रामायण का पाठ सुना दें तो तुम्हारा संकट दूर हो जाए। रोने लगा। बाबा बोले बच्चा मैं कोई सकाम पाठ नहीं करता हूँ, ये पंडितों से कराओ, मैं तो बाबा जी हूँ। अब वो इतना पक्का रोने ही लग गया, महाराज पांव छोड़े ही नहीं। बाबा बोले, मन में सोचा बाबा ने कि इसको वहां तो करनी पड़ेगी, पर ऐसा बतावे कि जिसमें ये कर ना पावे। उनकी इच्छा नहीं थी, मूल बात ये थी। तो बाबा बोले बकबक करता, पांव पकड़ के रोता है, रामचरितमानस का पाठ करो, पाठ करो। ऐसे बातों में पाठ होता बहुत खर्च लगता है। बोला महाराज आप पाठ करो, जो खर्च लगेगा सब हम आपकी दया से करेंगे। बाबा भोले बहुत थे, बादाम और मुनक्का और काजू और पिस्ता गांव में यहां कौन लाने वाला, बढ़िया केसर, बढ़िया मल्यागिरी चंदन, बढ़िया चंदन का संदल और बढ़िया सिंदूर, यों त्यों, और इतना रोज मालपुआ बनेगा, हनुमान जी को भोग लगेगा, इतना दूध आएगा, इतनी रबड़ी, इतना घी, सब गाय का होना चाहिए। बाबा ने लंबा खर्रा लिखवाया भगत। भगत भी विचित्र बोला, हां महाराज और कुछ बाकी हो तो और लिखा, पर पाठ आपसे ही कराना। गया झांसी से ला करके सब सामान महाराज के पास रख दिया। महाराज ने अन्न खाना बंद कर दिया। अन्न क्या खाना, बढ़िया काजू किशमिश। रात को पाव डेढ़ पाव बढ़िया मामरा बादाम भिजा दें और खूब मुनक्का भिजा दें, और बस सवेरे से हनुमान जी को बढ़िया भोग लगा के छान घोट के मस्त, और फिर पाठ करें एक एक चौपाई गागा करें। बाल कांड तक पाठ हो गए। अब जब भरत चरित्र शुरू हुआ तो बाबा एक एक चौपाई पढ़ के दहाड़ मार के रोने लग जाने। अब आगे पाठ ही न हो, सो नवाह पाठ का संकल्प लिया था, नवाह पाठ कहां से, बालकांड से आगे पाठ ही नहीं। दिन भर रोते रहे, न भोजन की सुध, बस खाली सवेरे वो मुनक्का बादाम भिजा करके पाले में काजू वगैरह सब भिजा देते थे, खूब भरपेट पाले भोग लगा के फिर बैठे पाठ करने, रात तक रोते ही। 9 दिन के बाद भगत आया, बोले महाराज पाठ पूरा हो गया। बोले बच्चा अभी तो अयोध्या कांड में चल रहा है पाठ। होते होते 3-4 महीने बीत गए, वो बाबा से अयोध्या कांड नहीं हुआ, भरत चरित्र नहीं हुई। अंत में बाबा एक दिन आया, बोले महाराज पाठ पूरा हो गया। बोले हमने तेरी जितनी बादाम खाई है बता दे हम कितने पैसा के, हम दे देंगे तेरे पैसा वापस। क्या हुआ महाराज, नाराज हो गए। बोले नहीं नहीं तू बता दे हिसाब करके कितना तेरा हमने खाया है, सब वापस कर देंगे मैं ब्याज के। बदमाश कहीं का ऐसा पाठ हमको बता दिया, इस जीवन में पूरा होने वाला तो है नहीं, मैं प्रेम से राम राम जपता था और छूट गया, इस जीवन में मुझसे भरत चरित्र पूरा नहीं होगा,
कह के बाबा रोने लगे। बोले बाबा हमारा तो बालकांड में ही पूरा हो गया, हमारे बहुत विपत्ति के दिन थे, आपके पाठ से उबर गए हमारे। बाबा ने कभी अयोध्या कांड का पूरा पाठ बाबा अपने जीवन में कर नहीं पाए, सुन नहीं पाए, इतने व्याकुल हो जाते थे। भैया भाव और प्रेम की अनुभूति तो अपने अंतःकरण के अनुरूप होती है, किंतु ऐसा कोई कठोर हृदय नहीं है जो मानस जी की पंक्तियों को पढ़े, भरत चरित्र को पढ़े और उसका हृदय व्याकुल न हो जाए, एक बार उसकी आंख गीली न हो जाए। और मान लो कथनचित कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो रामचरित्र को पढ़ सुन करके भी जिसका हृदय गीला नहीं होता, आंखें भर नहीं आती हैं, तो भैया ईमानदारी से उसे मनुष्य कहलाने का कोई अधिकार नहीं, वो मनुष्य कहलाने लायक। पाषाण हृदय में प्रेम प्रकट करने वाला श्री रामचरित्र है। भारी भव सागर उतार तो कवन पार, जो पे यह रामायण तुलसी न गाव तो, जो पे यह रामायण, जो पे यह रामायण तुलसी न गाव तो। श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि औज जी बड़े अद्भुत कवि हुए हैं, बड़ी अद्भुत वीर रसो वीर रस से परिपूर्ण जिनकी रचनाएं हैं, महात्मा कर्ण, वे भी श्री हरि औज जी कह रहे हैं गोस्वामी जी के संबंध में, बन राम रसायन की रसिका, बन राम रसायन की रसिका, रसना रसिकों की हुई सफला, रसना रसिकों की हुई सफला, अब गाहन मानस में करके, अब गाहन मानस में करके, जनमानस का मन मेल धुला, जनमानस का सारा मेल धुला, बनी पावन भाव की भूमि भली, बनी पावन भाव की भूमि भली, हुआ भावुक भावुकता का भला, हुआ भावुक भावुकता का भला, कविता करके तुलसी न लसे, कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसीपा तुलसी की कला, कविता लसीपा तुलसी की कला। हरिओम जी कह रहे हैं कविता करके तुलसीदास जी गौरवान्वित नहीं हुए, अपितु भाषा तुलसीदास जी जैसा प्रेमी रसिक संत कवि प्राप्त करके भाषा भी कृतार्थ हो गई, कविता भी आज धन्य हो गई, तुलसीदास जी की लेखनी में आकर के काव्य कला भी आज सफल हो गई। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के जैसा व्यक्तित्व महाराज ईमानदारी से कहा जाए तो जैसे कहते ना राम रावण यो युद्धम राम रावण यो रिव, ऐसे ही यदि हम ये कहें कि तुलसीदास जी के जैसे केवल श्री तुलसीदास जी महाराज हैं तो हम समझते हैं यह अतिशयोक्ति नहीं होगी।
तुलसीदास जी के जैसे
केवल श्री तुलसीदास जी महाराज हैं, यदि हम ऐसा कहें तो इसमें किसी प्रकार की कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।
महाराज जी, जहां तक भगवत कृपा से हमको देखने का अवसर मिला है, हमने ऐसा भगवत कृपा से अनुभव किया है कि कोई ऐसा महानुभाव महापुरुष नहीं हुआ। घड़ी में समय क्या हुआ?
सवा एक
हो गए। भैया देखो, अब हम झूठ बोल रहे हैं कि घड़ी झूठ बोल रही है? अब जिसने भी ये घड़ी रखी हो वो रखने वाला जाने, इस घड़ी के अनुसार हम कथा कह रहे हैं। 10:25 हो रहा है। हम सोच रहे थे कि 11:30 तक तो करना ही है कथा, तो 11:30 लगता हो गया। बोलो वृंदावन बिहारी, यहां कोई और भी कोई बड़ी घड़ी हो हमारी दृष्टि पड़ती रहे तो ठीक है, इस घड़ी में तो 10:25। तो बस अब हम अभी हम तो कथा इसी घड़ी के अनुसार कर रहे थे, अब अपने विषय का उपसंहार करते हैं। मूल बात यह है कि ऐसे पूज्य गोस्वामी कलिपावन अवतार श्रीमद् जगत गुरु गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इस प्रकार से महर्षि वाल्मीकि ही गोस्वामी जी के रूप में प्रकट हुए। हमारा भारतवर्ष अत्यंत पवित्र है, सारी भारतवर्ष की भूमि दिव्य है, कोई ऐसा गांव नहीं, कोई ऐसा नगर नहीं, और बारीकी से विचार करो तो कोई ऐसा गांव नहीं, और बारीकी से विचार करो तो कोई ऐसा परिवार नहीं होगा जिसमें कोई न कोई महान संत प्रकट न हुआ होगा। कोई ऐसा परिवार नहीं होगा। आप लोग कहेंगे हमें तो अपनी 10-12 पीढ़ी तक की याद है, कोई महात्मा हुआ नहीं। आपसे पूछते हैं आपका क्या गोत्र है, क्या गोत्र है आपका? अब कोई बताता हमारा पराशर है, कोई बताता गर्ग है, कोई बताता भरद्वाज है, कोई बताता वशिष्ठ है। तो अब हम आपसे पूछते हैं, हम आप सब ऋषियों की संतान है कि नहीं? कोई ऐसा खानदान नहीं जिसके पूर्वज कोई महात्मा न हो, कोई ऋषि न हो। सारा भारतवर्ष अत्यंत पवित्र है, पुनीत है, और उस भारतवर्ष में भी गंगा यमुना के मध्य का क्षेत्र अत्यंत पवित्र कहा गया है, और उसमें भी तीर्थराज प्रयाग, क्या कहना, सतीर्थराजो जयति प्रयागः, तीर्थराज प्रयाग की जय हो। तीर्थराज प्रयाग की बड़ी महिमा है। इसी तीर्थराज प्रयाग से लगभग 15 कोस पश्चिम में श्री यमुना जी के तट पर स्थित उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के बांदा जिले के अंतर्गत राजापुर नामक गांव गोस्वामी जी के आविर्भाव से कृतार्थ हुआ। हमारे भारतवर्ष की 3 नदियां, वैसे तो अनेक नदियां हैं, पर हम 3 नदियों की विशेष बात कह रहे हैं। भारतवर्ष की पवित्र नदी गंगा, वो ज्ञान को प्रदान करने वाली है। महात्माओं ने अनुभव किया है, केवल गंगा जल का सेवन करे, गंगा जी के तट का आश्रय ले, गंगा में स्नान करे, एक अक्षर पढ़ा लिखा न हो, श्रद्धा पूर्वक गंगा जी का सेवन करे, उसको आत्मबोध हो जाए। इतनी महिमा है गंगा जी के जल की, स्वरूप का ज्ञान हो जाए, ज्ञान देने की सामर्थ्य गंगा जी में। वज्र हृदय हो और हमारी श्री यमुना जी का आश्रय ले ले, उसका हृदय प्रेम से द्रवित हो जाएगा।
यमुना जी जल नहीं है, युगल का प्रेम ही उच्छलित होकर के बह रहा है।
श्री यमुना जी भी गिरजा हैं,
विरजा ही तो यमुना बनकर के आई है धरती पर, विरजा। और सरयू जी भी विरजा हैं, इसलिए जो महात्म यमुना जी का है वही सरयू जी का है।
सरयू जी का सेवन करने वाला पाषाण हृदय वाला व्यक्ति भी भगवत प्रेम से परिपूरित हो जाएगा।
और नर्मदा जी वैराग्य देने वाली है, भोगों से संसार से वैराग्य देने वाली है नर्मदा जी। नर्मदा जी का जल पीते पीते विरक्त भाव आ जाए।
एक सिद्ध पुरुष की ये वाणी है, श्री संपूर्णानंद जी कहते थे हमने अपने जीवन में तीनों नदियों का सेवन किया और यह पृथक पृथक उनकी महिमा का अनुभव किया।
गोस्वामी जी के जीवन का प्रारंभ है यमुना तट से और मानस की रचना है सरयू तट
और अंतिम क्षण तक निवास है गंगा तट।
इसलिए वो प्रेम नदी यमुना के तट पर प्रकट भए हैं, इसलिए प्रेम का सर्वोच्च स्वरूप गोस्वामी जी के चरित्र में है। साक्षात द्रवीभूत ब्रह्म का स्वरूप जो पतित पावनी त्रिभुवन पावनी भगवती भागीरथी गंगा है, उन गंगा का अंतिम क्षण तक सेवन किया है, इसलिए गोस्वामी जी के जैसा ज्ञान अन्यत्र कहीं उदाहरण नहीं मिलता।
ज्ञान की भी पराकाष्ठा है और सरयू जी का सेवन के किया तो रामचरितमानस, यही तो सरयू है। सरोवर से सरयू निकले, मान सरोवर से रच महेश निज मानस राखा, और उस मान सरोवर से रामचरित मानस रूपी सरयू प्रकट हुई, वहीं से जरी ये धारा।
ये गोस्वामी जी का विलक्षण व्यक्तित्व है। तो श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज तीर्थराज प्रयाग से 15 कोस पश्चिम में राजापुर गांव में सरयू पारीण विप्रकुल में पराशर गोत्र में पंडित श्री आत्माराम दुबे के यहां 12 महीने तक अपनी माता हुलसी की कोख को धन्य करके संबत विक्रम संबत 1554 में श्रावण मास में शुक्ल पक्ष में सप्तमी तिथि को शनिवार को
सायंकाल संध्या के समय
अभिजित नक्षत्र में
हम सबके चरित्र नायक गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ और गोस्वामी जी के संबंध में यह दोहा अत्यंत प्रसिद्ध है।
1554 विषे कालिंदी के तीर श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धर्यू शरीर।
बाबा श्री विनी माधवदास जी कृत जो मूल गुसाई चरित्र है, मूल गुसाई चरित्र का यह दोहा अत्यंत प्रसिद्ध है। 1554 में यमुना जी के तट पर श्रावण शुक्ला सप्तमी को तुलसी धर्यू शरीर, तुलसीदास जी ने शरीर धारण किया।
तुलसीदास जी ने शरीर धारण किया, इसका मतलब क्या हुआ?
कर्म के बंधन में बंधकर वे नहीं आए, संभवाम्यात्म माया है, जैसे भगवान कहते मैं अपनी इच्छा से प्रकट होता हूं, ऐसे ही गोस्वामी जी ने एक आकार ग्रहण कर लिया।
महाराज जी, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का जब जन्म हुआ, संपूर्ण गांव के लोग राजगुरु पंडित आत्माराम दुबे जी को बधाई देने आए, वे आनंद में व्यस्त थे। इसी बीच में एक दासी दौड़ी भई आई और उसने पंडित जी से कहा, पंडित जी भीतर घर में आपकी बुलाहट हो रही है। वो जो सूचना देने वाली दासी थी उसके चेहरे पर बड़ा भय का भाव, उद्वेग का भाव दिखाई पड़ रहा था।
यह देखकर पंडित जी चिंतित हुए, घर में प्रवेश किया, दासी से भीतर सूचिकागार में जाने के पहले ही पूछ लिया, क्या बात है, क्यों इतनी घबराई हुई हो? अरे पुत्र का जन्म हुआ है, प्रसन्नता का समाचार है, तुम सुनकर इतनी घबरा क्यों रही हो? उसने कहा, महाराज अलौकिक बालक है, विचित्र बालक है। हमने कितने बालकों का जन्म कराया है, मैं दाई हूं, लेकिन ऐसा बालक देखा नहीं। जन्मते ही 5 वर्ष की सी आयु के लग रहे थे गोस्वामी। एक बात प्रसंग बस हम और कह दें, गोस्वामी जी अपनी अंगुली के प्रमाण से 108 अंगुल लंबे थे और ये इतना विलक्षण लक्षण है, ये मनुष्य में घटित होने वाला लक्षण नहीं है। भगवान श्री राम अपनी अंगुली के प्रमाण से 108 अंगुल के थे, भगवान 108 अंगुल के हैं, भगवान श्री कृष्ण अपनी अंगुली के प्रमाण से 108 अंगुल के हैं, कहां तक कहें, बामन भगवान जो इतने छोटे, उनको बामन अंगुल गात कहते जरूर हैं, हम लोगों की गणना से बामन अंगुल गात, पर वे बामन भगवान भी अपनी अंगुलियों के प्रमाण से 108 अंगुल के थे। हमारे अंगुल से भले ही बामन अंगुल के हों, पर अपनी अंगुलियों के प्रमाण से बामन भगवान भी 108 अंगुल के थे। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी अपनी उंगुली के प्रमाण से 108 अंगुल के, इतना दिव्य स्वरूप। और यह बालक जन्मते ही ना तो हंसा और ना रोया। और एक विचित्र बात है, जब बालक का नालो छेदन में कर रही थी, उस समय शंख की ध्वनि सुनाई पड़ी। कहां तो भगवान का दिव्य शंख बजा, पर गांवड़े के लोगों ने उसे देवी उत्पात ही समझा, शंख ध्वनि सुनाई पड़ी। और इस बालक ने जन्म लेते ही 3 बार राम नाम का उच्चारण किया, राम राम राम। जन्मते ही इनके मुख में 32 दांत हैं। पंडित जी मैं बूढ़ी हो गई, बच्चों का जन्म कराते कराते मैंने अपने जीवन में ऐसा कोई विचित्र बालक नहीं देखा। सूतिकागार में हाहाकार मची है, सब जगह चर्चा हो रही है, पंडित जी के घर में किसी दैत्य दानव ने जन्म लिया है। हे भगवान, ये भाव व्यक्त किए जा रहे हैं तुलसीदास जी के संबंध में। देखो विचित्र विडंबना है, इतने बड़े विद्वान पंडित जी भी उदास हो, मन में विचार करने लगे, हमारा कोई पूर्वकृत पाप उदित हुआ है जो ऐसा असामान्य बालक उत्पन्न हुआ है, हाय रे हाय, मैं क्या करूं, अभुक्त मूल में उत्पन्न हुआ है। और भीतर गए और जैसा था वैसा उन्होंने सत्य पाया, मुख मिलान हो गया, उनके भी नेत्र सजल हो गए। और परम भाग्यवती श्री तुलसी माता ने यह समझ लिया पंडित जी की मुखाकृति को देख करके कि अब बालक की सुरक्षा संकट में है, कहीं ऐसा न हो कि लोगों के दुराग्रह को, उनकी आशंकाओं को सत्य मान करके पंडित जी इस बालक का त्याग न कर दें, तो इस बालक को कहीं जीवित ही यमुना जी में न बहा दें। मैं यह दृश्य देखने के लिए जीवित नहीं रहना चाहती। वात्सल्यमयी मां तुलसी व्याकुल हो गई और अपनी दासी चुनिया को कहा, चुनिया ले ये मेरे आभूषण, इनसे इस बालक का पोषण करना और तू रात्रि में ही यहां से विदा हो जा। तुलसीदास जी को चुनिया के हाथ में देते ही माता ने भगवत धाम प्रयाण किया और चुनिया गोस्वामी जी को लेकर के अपने गांव हरिपुर आ गई। अब तो हरिपुर अपनी ससुराल में आ गई और सास ससुर ने भी उसके भावों का अभिनंदन किया। कहा नहीं ठीक है, तुमने जो दया का भाव दिखाया है यह सराहनीय है। और गोस्वामी जी का वहां पालन पोषण होने लग गया। गोस्वामी जी के जन्म के तीसरे दिन तुलसीबाई की मृत्यु हो चुकी थी। पंडित जी ने तुलसीबाई का संस्कार किया और वे भी उस पुत्र से उदासीन हो गए। चाहिए था कि पता लगा करके बालक को लाते, लेकिन उन्होंने कहा मेरी सहधर्मिणी भी चली गई, ऐसे संस्कार शून्य भाग्यहीन बालक को मैं अपने घर लाकर क्या करूंगा। पंडित जी भी उस बालक से उदासीन हो गए और चुनिया ने प्रेम से गोस्वामी जी का लालन पालन किया और 5 वर्ष तक गोस्वामी जी को किसी प्रकार की कोई पीड़ा कष्ट नहीं हुआ। 5वें वर्ष की आयु में जब गोस्वामी जी थे, उसी समय एक दिन चुनिया भी परलोक सिधार गई। और जब चुनिया परलोक सिधार गई, तब चुनिया का जो पति था, देखो चुनिया जो है वो राजापुर की तो बेटी है और हरिपुर की बहू है, तो उस चुनिया के पति ने राजापुर, उसकी ससुराल है राजापुर में, आकर के पंडित जी को सूचना दिया आत्माराम दुबे जी को कि ऐसी ऐसी घटना घट चुकी है, अब मेरी पत्नी भी विदा हो चुकी है, उस बालक की सार संभार कौन करेगा, आप राजगुरु हैं उस बालक की शिक्षा दीक्षा संपन्न करावें। पंडित जी इतने उदासीन हो गए, बोले ऐसे बालक को लेकर हम क्या करेंगे जो अपने पालन पोषण करने वाले का ही विनाश कर देता है। जन्म देने वाली मेरी पत्नी पधार गई, उसकी मां पधार गई, फिर चुनिया पालन करने वाली थी वो भी चली गई, ऐसे बालक की हमें कोई आवश्यकता नहीं, जैसा चाहो वैसा करो, तुमने पालन पोषण किया तुम जैसा चाहो वैसा करो। उसी समय राजापुर में एक महात्मा आए हुए थे, उन्होंने जब ये बात सुनी तो वे बहुत पीड़ित हो गए और वे इतने क्रोध में भर गए, उन्होंने कहा ऐसा बालक जिसने जन्म लेते ही राम नाम का उच्चारण किया हो, ऐसे बालक का आदर यह गांव नहीं कर पा रहा है और यह दुबे परिवार आदर नहीं कर पा रहा है, तो अब यह परिवार ज्यादा दिन तक रहने वाला नहीं है। साधु अवज्ञा तुरत भवानी कर कल्याण अखिल के हानि, इस वंश का शीघ्र विनाश हो जाएगा। 6 महीने के भीतर आत्माराम दुबे जी का सारा परिवार पधार गया। हम इस घटना को इस अर्थ में लेते हैं कि तुलसीदास जी महाराज जैसे संत के प्रकट होने के बाद वे उनके निकट संबंधी लोग संसार के बंधन में क्यों रहे, वे सब मुक्त होकर भगवत धाम चले गए। गोस्वामी जी कुल तारक हैं, इसलिए अपनी मैया को भी भगवत धाम पहुंचा दिया, पिताजी को भी, पूरे कुटुंब खानदान को। लोग तो कहते भक्त के जन्म लेने से 21 पीढ़ी तर जाती है, कब तरती है, जब मरती है तब तरती है, और यहां तो पहले ही सबको तार दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। इस प्रकार से, लेकिन अब गोस्वामी जी का जो दुर्दिन है वो आया और उस दुर्दिन का वर्णन बड़ा अद्भुत, उसका वर्णन हम कल करेंगे, आज नहीं करेंगे, आगे के चरित्र को हम कल करेंगे। लेकिन पूज्य मामा जी की वाणी के माध्यम से जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो उसकी एक तो पंक्ति कह करके फिर हम अपनी वाणी को विराम करेंगे।
है नमन पाद पद्मों में बारंबार बाबा तुलसी कलित तिल जीव निस्तार हेतु अवतार बाबा। है नमन पाद पद्मों में बारंबार बाबा तुलसी कली कुटिल जीव निस्तार हेतु अवतार बाबा। है नमन पाद पद्मों में बारं बार बाबा तुलसी कली कुटिल जीव निस्तार हेतु अवतार बाबा
तुलसी। हे नमन पार पदिमों में बारंबार बाबा
तुलसी कली कुटिल जीव निस्तार अद्भुत जीवन प्रेत आपका भिन्न सर्व साधारण से
अद्भुत जीवन प्रेत आपका भिन्न सर्व साधारण से
अद्भुत जीवन प्रेत आपका भिन्न सर्व साधारण से
अद्भुत जीवन वेत आपका भिन्न सर्व साधारण से
जनमत मुख बत्तीस दंत जो अश्रुत सिद्ध कविचारण से
जनमत मुख बत्तीस दंत जो अश्रुत सिद्ध कविचारण
इतर भिन्न तजी कहाँ कहाँ मुख खुला राम उच्चारण से
इतर भिन्न तजी कहाँ कहाँ मुख खुला राम उच्चारण से
प्रगटे अशुभ अभुक्त मूल में हुए तरण अरुतारण
आप प्रगटे अशुभ अभूत मूल में हुए तरण अरुतारण
ले नाम आपका बहुत हुए भव पार बाबा तुलसी कलि कुटिल जीव विस्तार हेतु भव पार बाबा
नाम आपका तुम्हें भव पार बाबा तुलसी कलि कुटिल जीव निस्तार हेतु अवतार बाबा तुलसी।
बत्तीस दांत सबके मुंह में नहीं होते ये बात और समझ लो। किसी को अट्ठाईस होते किसी को तीस होते बत्तीस नहीं होते। और जिसके मुख में पूरे बत्तीस दांत होते हैं वो वचन सिद्ध होता है वाक सिद्ध होता है उसकी वाणी उसका शाप भी सफल हो जाता है उसका आशीर्वाद भी सफल हो जाता है। सामान्य लोगों के बत्तीस दांत नहीं होते सबके। आओ घर जाके दर्पण देख के गिन लेना किसके कितने दांत। हम अपनी कहते हैं हमारे बत्तीस दांत पूरे हैं। बत्तीस दांत सबके नहीं होते। मुख में बत्तीस दांत हो और जिह्वा पर ऊर्ध्व रेखा हो पूरी लंबी सीधी लगी वो स्पष्टवादी होता है झूठ छल कपट वाली बात नहीं बोलता और उसकी बात भी सच्ची निकलती है। गोस्वामी जी में यही लक्षण जन्मजात है।
हुए दिवंगत पिता आत्मा राम पुत्र मुख लख न सके
दिवंगत पिता आत्मा राम पुत्र मुख लख न सके
तुलसी भी चल बसी आप बात्सल्य सुधा सुख चख न सके
तुलसी भी चल बसी आप बात्सल्य सुधा चख न सके
दुनिया को भी दुनिया में विधि बहुत दिनों तक रख न सके
चुनिया को भी दुनिया में विधि बहुत दिनों तक रख न सके
राजापुर के लोग आपसा रत्न नितांत परख न सके
राजापुर के लोग आप सारा नितांत परख न सके
अब रहा एक श्री राम। आधार बाबा तुलसी
कलि कुटिल जीव के सार है तू अवतार
बाबा
तुलसी अब रहाए श्री राम नाम आधार बाबा
तुलसी
कलि कुटिल जीव के सार है तू अवतार बाबा तुलसी
अब रहा आधार बाबा तुलसी
कलि कुटिल जीव के सार है तू अवतार बाबा तुलसी अब रहाए श्री राम नाम आधार बाबा तुलसी कलि कुटिल जीव के सार है तू अवतार बाबा
है नमन पाद पद्मों में बारंबार बाबा तुलसी कलि कुटिल जीव निस्तार है तू अवतार बाबा तुलसी
है नमन पाद पद्मों में बारंबार बाबा तुलसी कलि कुटिल जीव सार है तू अवतार बाबा।